5 कबीर की कविताई। यह जिन जानह गीत है यह निज ब्रह्म विचार, केवल कही समझाया आत्म साधन सार रे। कबीर कह रहे हैं कि उन्होंने कोई कविता नहीं लिखी है, जो कुछ कहा है वह उनका ब्रह्म विचार है। तुलसी पंडित होते हुए भी अपने को कवित विवेक से शून्य घोषित करते हैं, जैसी अपने को पंडितों का पछिलगा मानते हैं। तात्पर्य कि भक्ति काव्य के किसी भी रचयिता ने अपने को कवि नहीं कहा या माना, कविता करना उनका लक्ष्य था ही नहीं। उनका लक्ष्य भगवत भक्ति था और उस सिलसिले में ही उन्होंने जो कुछ कहा या लिखा, यदि उसमें कविता है तो जैसा कि आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी का कहना है, वह घलुए में मिली वस्तु है। भक्तों और संतों से कविता हमें घलुए में ही मिली हो, क्योंकि भक्ति के उनके उद्गारों में वह सहज ही ऊपर थिरा कर आ गई है। अतएव जरूरी है कि हम उसे जांचे परखें, समझें और गुने। घलुए में मिल जाने के नाते ही वह हमारे लिए कम महत्वपूर्ण और कम मूल्यवान नहीं है। उल्टे जैसा कि सच है, सारे संतों और भक्तों की तथा सब की सब न सही, जितना और जहाँ तक उनमें कविता है वह बड़ी कविता है, मूल्यवान कविता है, कविता के ऊंचे से ऊंचे मानदंडों में कविता है, आगे के समयों के महाकवियों के लिए आदर्श भी और चुनौती भी। संदेह सूर और तुलसी मीरा या रसखान के बारे में या अधिक व्यापक धरातल पर बात करें तो संदेह सगुण भक्तों के बारे में, उनके भक्त जनित उद्गारों के बारे में नहीं उठाया गया है कि उनमें कविता है या नहीं या कितनी कविता है। संदेह किया गया है निर्गुण संतों की वाणी के कविता होने पर या कम से कम उत्कृष्ट कविता होने पर। और जब संदेह आचार्य शुक्ल जैसे काव्य मर्मज्ञ करें तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम संतों के कथनों में गहराई से उतरें और जांचें कि वस्तुतः उनमें। चूंकि संप्रति हमारा विवेच्य कबीर हैं और शुक्ल जी के ने कबीर की वाणियों के कविता होने पर संदेह ही नहीं किया, अपने कथन के पक्ष में ठोस तर्क भी दिए हैं, अतएव शुक्ल जी के तर्कों के बरक्स हम कबीर की इन वाणियों को देखेंगे, ताकि हम आश्वस्त होकर कह सकें कि कबीर की रचना में कितनी कविताई है और कितना वह कुछ जिसे शुक्ल जी ने या तो सांप्रदायिक शिक्षा कहा है या फिर रहस्यवाद के दायरे में आने के नाते कविता का विषय ही नहीं माना। जेनुइन और प्रामाणिक कविता की बात तो दूर। दिलचस्प तथ्य यह है कि शुक्ल जी के कबीर विवेचन के विपरीत हर स्तर पर, वह कबीर का रहस्यवाद हो, उलटवासियां हो, धर्म और समाज के प्रभुओं और पाखंडियों पर कबीर के वज्र प्रहार हो, उनकी योग परक उक्तियां हो, कबीर का दृढ़ता के साथ पक्ष लेने वाले, उनका समर्थन करने वाले आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी कविताई के सवाल पर भी आचार्य शुक्ल से उनकी सारी काव्य मर्मज्ञता के बावजूद असहमत हैं और कबीर वाणी को न केवल कविता वरन उत्तम कविता कहते हैं। अतएव हमारे सामने सवाल इन दोनों आचार्यों के अभिमतों के बीच से होकर कबीर की सर्जना की कविताई को परखना है। बात चूंकि भक्ति की उठी है, अतएव सबसे पहले हम कबीर के विशुद्ध भक्त रूप को लेते हैं। कबीर की भगवत भक्ति की विवेचना करने के पहले द्विवेदी जी ने उनकी इस उक्ति को उद्धृत किया है कि संतों भक्ति सतो गुर आनी, अर्थात सदगुर भक्ति ले आए हैं। उन्होंने जोर देकर नाम न लेते हुए आचार्य शुक्ल की इस मान्यता का खंडन किया है कि अद्वैत कविता का विषय नहीं हो सकता, अथवा अव्यक्त को भक्ति का और कविता का आलंबन नहीं बनाया जा सकता। उनके अनुसार प्रथमतः तो कबीर के निर्गुण राम और वेदांतियों के निर्गुण ब्रह्म में मौलिक मतभेद है। कबीर पृष्ठ 153। चूंकि भगवत विषयक प्रेम ही भक्ति है, नारद भक्ति सूत्र 1-2, तथा अनुकूल भाव से भगवान के विषय में अनुशीलन करना ही भक्ति है, भक्ति रसामृत सिंधु, बशर्ते यह अनुशीलन ज्ञान और कर्म से ढका हुआ न हो और न अनुशीलन करने वाले के हृदय में भगवान की भक्ति के सिवा और कोई अभिलाषा हो। वहीं अतएव भगवत विषयक यह जो अहेतुक या कारण रहित प्रेम है, वह न तो निरुपाधिक स्वरूप के लिए संभव है और न अद्वैत भावना के विरुद्ध। अद्वैत भावना भक्ति के मार्ग में बाधक नहीं है। कबीर पृष्ठ 153। आचार्य शुक्ल का मत इसके विपरीत है। उनके अनुसार यद्यपि शुद्ध तत्व ज्ञान के लिए ब्रह्म निर्गुण और अव्यक्त कहा गया है, पर उपासना के लिए उसका सगुण और व्यक्त रूप ही सामने रखा गया। विभूत ऐश्वर्य आदि के बिना मनुष्य का हृदय जम नहीं सकता। जहाँ ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं, वहाँ उपासना कैसे चल सकती है। भक्ति का विकास सूरदास पृष्ठ 17। और भी सब जगह भक्ति मार्ग ब्रह्म के उभयात्मक स्वरूप को लेकर चला है। अतः यह प्रकट करना कि व्यक्त और ससीम से हमसे कोई मतलब नहीं, हम तो केवल असीम में जाकर रमा करते हैं, भक्ति के वास्तविक सिद्धांत के विरुद्ध है। अव्यक्त निर्गुण असीम इत्यादि निषेधात्मक शब्दों का अभिप्राय केवल इतना ही है कि जहाँ तक ब्रह्म हमारी परिमित बुद्धि को व्यक्त है, जिस सीमा तक हमारा ज्ञान पहुँच सकता है, जिस गुण समूह तक हमारी अनुभूत जा सकती है, उसके आगे भी वह अनंत है। उसके आगे उसका स्वरूप न जाने कैसा है, उसके आगे उसके गुण न जाने क्या क्या है। अतः व्यक्त और ससीम को लेकर ही भक्त ध्यान करके बैठता है, पर उसमें यह भावना और जोड़ देता है कि वह यहीं तक नहीं है, इससे आगे भी न जाने क्या और कहां तक है। वहीं पृष्ठ 51। रहस्यवादी कवियों के विषय में शुक्ल जी का कहना है, वे अव्यक्त को अव्यक्त कहकर ही नहीं छोड़ना चाहते, अपनी दृष्टि की दिव्यता का प्रमाण देने के लिए अव्यक्त तक अपने ज्ञान की पहुँच करने के लिए वे उस अव्यक्त का वर्णन भी करने लगते हैं। भावना या काव्य कला की दृष्टि से ऐसे चित्रण का कुछ मूल्य अवश्य होता है, पर उक्त धारणा उत्पन्न करने की चेष्टा की झलक से उसमें बट्टा लग जाता है। कोरी कल्पना की उड़ान को हम ब्लेक की तरह आध्यात्मिक तथ्य का साक्षात्कार या ज्ञानोपलब्धि नहीं मान सकते। वहीं पृष्ठ 53। शुक्ल जी ने उपर्युक्त बातें एकाधिक बार प्रसंग आने पर कही है। उदाहरण के लिए गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति पद्धति की चर्चा करते हुए वे कहते हैं, भक्ति रागात्मिका वृत्ति है, हृदय का एक भाव है। प्रेम भाव उसी स्वरूप और उसी गुण समूह पर टिक सकता है जो अदृश्य जगत में हमें आकर्षित करता है। इसी जगत के बीच भाषित होता हुआ स्वरूप ही प्रेम या भक्ति का आलम्बन हो सकता है। इस जगत से सर्वथा असंबद्ध किसी अव्यक्त सत्ता से प्रेम करना मनोविज्ञान के अनुसार सर्वथा असंभव है। भक्ति केवल ज्ञाता या दृष्टा के रूप में ही ईश्वर की भावना लेकर संतुष्ट नहीं हो सकती। वह ज्ञातृपक्ष और ज्ञेय पक्ष दोनों को लेकर चलती है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ 9। विस्तार में न जाकर और अधिक उद्धरण न देकर संप्रत हम यही कहना चाहेंगे कि शुक्ल जी अपने विवेकवाद बुद्धिवाद और मनोविज्ञान सम्मत अनेक दृष्टिकोण के चलते तथा भक्ति विषयक अपने शास्त्रीय ज्ञान के चलते इस बात को लेकर दृढ़ है कि अव्यक्त या असीम को लेकर प्रेम या भक्ति का मजमून नहीं बांधा जा सकता। वह भावना और कल्पना की स्थिति के नाते किंचित काव्यक्त का आभास तो देगा, परंतु वह जेनुइन और सच्ची कविता नहीं होगी। कविता तो क्या, वह भक्ति की प्रामाणिक अनुभूति भी न होगी। ज्ञान के प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार मानने वाले लोग के विपरीत ही कविता का जन्म और विकास मानने वाले तथा कविता को सजीव जीवन व्यापारों का चित्रमय प्रस्तुतिकरण मानने वाले शुक्ल जी की यही जमीन हो सकती थी, और वे अपनी जमीन पर पूरी आस्था तथा दृढ़ता से कायम हैं। रहस्यवाद इसी नाते उनके द्वारा अमान्य हुआ है। वह मध्यकालीन रहस्यवाद हो या आधुनिक, इस रहस्यवाद की किसी भारतीय काव्य परंपरा को वे स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार वाल्मीकि से लेकर समूची भारतीय काव्य परंपरा में कोई भी बड़ा कवि रहस्यवादी कवि के रूप में नहीं जाना गया। उन्हें रहस्यवादी कहा गया है, उनमें यह रहस्यवाद बाहर से आयातित है। कबीर के संदर्भ में सूफियों से और रविन्द्रनाथ के संबंध में संदर्भ में भी इन्हीं स्रोतों से या पश्चिम के ऐसे ही कवियों से उपनिषदों से उसका मेल खाने के मायने यह नहीं है कि वह भारतीय परंपरा का अंग है। दर्शन की परंपरा में वह जरूर हमारे यहाँ रहा है। ब्रह्म का दर्शन विषय जरूर है, काव्य की परंपरा में नहीं। उसे काव्य के अंतर्गत लाना कविता में दर्शन तथा कथित अध्यात्म की अनावश्यक घुसपैठ है। अध्यात्म शब्द को वे काव्य के क्षेत्र से बाहर निकाल दिए जाने के पक्ष में हैं। कविता संबंधी शुक्ल जी के कुछ विचार जान लेने के बाद हम अपने मुख्य विषय कबीर की कविताई पर आएंगे, ताकि हमें उसे समझने में सुविधा हो और हमारे निष्कर्ष निर्भ्रांत